जिसको सुनना है वो सामने देखे, और जो हमारे गुरु वर्ग हैं वो हमारे भगवान का भजन में प्रवेश करना है तो प्रहलाद महाराज का चरित्र अच्छी तरह से समझ करके इसमें प्रतिष्ठित होना है। और यदि भजन करने की इच्छा नहीं है तो खूब श्लोक को खर्च करो और थोड़ा सा भक्ति का कहीं से आभास लेकर के कुछ दिन आश्रम में रह जाए, इसके बाद में संसार में चल कर स्वतंत्र होकर ऐसा नहीं करते, इसमें प्रतिष्ठित होने की देता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी आपकी बात मानने की तो और किसी की बात नहीं है, इसे करते हमारी जाने को श्रृंखला देने लगे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो प्रवीण वैष्णव हैं हम लोगों के जाने के बाद भी कहीं उनके अनुगत्य मेरा कर सकते, ऐसा नहीं कि किसी की शाम सेवा के लिए कहा जाए। मैं शिवानंद के साथ में नहीं जाऊँगा, मैं प्रेमानंद के साथ में बातचीत नहीं करूँगा, मैं दामोदर सिंह के साथ में मैं कभी नहीं जाऊँगा, यह सब दुर्बुद्धि नहीं होने पाए। भगवान की सेवा के लिए प्रहलाद महाराज जी जैसे अपने को उत्सर्ग कर दिया था, ऐसे भगवान की सेवा किसी एक व्यक्ति की नहीं है। प्रहलाद महाराज जी जैसे वहाँ के बच्चों को शिक्षा देते हैं, पिताजी के लात मारने पर भी नहीं कहते कि हमको आप क्यों मार रहे हैं, भगवान से प्रार्थना भी नहीं करते हैं ये प्रभु जिसे हमारी रक्षा की, कभी कोई प्रतिवाद नहीं कर सकते। क्यों? सबको मैं यदि हम लोगों के पास में आकर के कुछ सत्र में प्रवेश नहीं हो सका, भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं किया और अपना सामाजिक राजनीतिक इत्यादि भाव में वो जटिल रहा, तो हमने ये सीखा ही नहीं। मैं प्रहलाद महाराज जी के उपाख्यान के प्रथम जो अध्याय है इसको समझने के लिए 30-35 वर्ष हमने चर्चा की, समझ में आता ही नहीं था। गुरु जी तो चले गए थे, उनसे पूछने का अवकाश नहीं, बहुत चर्चा करता रहा है। करते करते अभी गीता का हम लोग भाष्य कर रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की थी, बलदेव जी के आकर्षण की गीता थी, सब कुछ समझ में आया। थोड़ा अभी पूरा नहीं, इतने वर्षों के बाद में आज 50 वर्ष हो गए हम लोगों को मरे और इतने गुरु वैष्णवों का संग किया, इसलिए प्रभुपाद जी इस उपाख्यान को 108 बार पाठ किया था, हमने सुना है 108 बार। इसलिए प्रतिष्ठित होने के लिए जब ऐसे महापुरुष लोग इतना ऐसा करते हैं, महाप्रभु जी चैतन्य महाप्रभु खूब उपदेश दिया, प्रहलाद महाराज जी का चरित्र पढ़ो, उसमें प्रतिष्ठित होने की चेष्टा करो, और वो जब पढ़ते थे लोग उससे आविष्ट हो जाते थे। और इसलिए साधारण चीज मत समझो, भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए ये प्लेटफॉर्म दरवाजा है। इसलिए जब इसको आप लोग नहीं अच्छी तरह से समझेंगे तो परस्पर लड़ेंगे। सामसिक भाव इसमें बदला है ना, सत्य रज तम ये तीन भगवान ने इसने समदर्शी होकर के दी, सत्य प्रति संभाव से लेकर चर अचर जितने प्राणी ब्रह्मा तक जो इस चीज के अंतर्गत हैं, सबके प्रति या गोलोक वैकुंठ तक कृष्ण या भगवान तक है समदर्शी है। उनका न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, कोई भी प्रिय प्रिय है कि वो देवताओं का पक्ष लेकर के असुरों को मरवाते हैं और मारते हैं, खुद भी मारते हैं मरवाते हैं, पांडवों का पक्ष लेकर के दुर्योधन और उसकी सारी सेनाओं को मरवाया है। ये देश का काम क्यों किया भगवान, एक का पक्ष को लिया और एक का पक्ष नहीं लिया, उनके लिए तो सभी बराबर हैं, ऐसा क्यों नहीं क्यों किया? इसी चीज को मैं समझने की चेष्टा कर रहा था, वो कहते हैं ये गुणों के कारण होता है। भगवान का कहीं समता भी समता नहीं, उन पर ये दोष नहीं लग सकता, ये भगवान किसी के प्रति प्रिय है किसी के प्रति अप्रिय है ये नहीं है, वो सब में समभाव है। इस असुरों का जो पक्ष विपक्ष ले रहे हैं सब समय, और भक्तों का पक्ष ले रहे हैं इसमें दृष्टिकोण का थोड़ा सा अंतर है। प्रश्न हमारा ये था कि भोक्ता कौन है, सुख दुख का भोक्ता और शत्रु मित्र का यह भाव किसमें है? जब श्रीमद्भागवत में हम लोग दूसरी जगह देखते हैं या गीता इत्यादि में, तो इस जगत में जो मनुष्य है या कोई भी प्राणी काम करता है उसमें केवल आत्मा ही नहीं कर सकता, उसके पांच कारण बदलाए। पांच कारण क्या क्या? यह शरीर, मन, पूर्व जन्म के संस्कार, प्रकृति के गुण, आत्मा और परमात्मा, ये पांच। आत्मा पहले परमात्मा, आत्मा प्रकृति के गुण, शरीर और मन, ये सब मिल करके ये कार्य करता है। इसमें से आत्मा और परमात्मा को छोड़ करके बाकी जो है वो तीन काल हैं, वो कालों का भी भाग है। यही काल प्रबल होकर के ऐसा ये दिखलाता है जैसे मैंने किया, मैं इसका फल भोग कर रहा हूँ। हर उपाख्यान में देखो वहाँ कहते हैं कि आत्मा इसका भोक्ता नहीं है, सुख दुख का भोक्ता और कर्मों का कर्ता नहीं है। यही बतला रहे हैं भरत महाराज जी रोहगण से। ये कर्ता कौन है, फलों का भोग करने वाला कौन है, जीवात्मा है कि परमात्मा? परमात्मा तो है नहीं, वो तो एकदम स्पष्ट है, वो साक्षी है, भोग कराने वाला नियामक है सब। और जीवात्मा स्वरूप जीवात्मा भी करता है। जब से उसने समझा कि मैं शरीर हूँ, इंद्रियां हूँ, अब मैं करने वाला, तब से ये आरोप करने वाला तो भोक्ता कौन है, शुद्ध जीवात्मा भी नहीं है। और प्रकृति काल इत्यादि सभी ये सब जड़ है, आखिर भोक्ता हुआ कौन? इन्हीं सब चीजों को दिखलाया गया है। ये समझ में आना बड़ा था कठिन है, जिस समय ये आ जाएगा तब काम क्रोध सब दूर हो जाएंगे, किसी के प्रति चिंता नहीं होगी, देश नहीं होगा, सत रज तीन गुणों को छोड़ देंगे नीचे, तब भजन आ रहा। जब तक मान लिया कि जिसे स्वरूप सीधा भक्ति भी उस समय करते हैं, सात्विक राजसिक और तामसिक गुणों में सूचित होकर के कर रहे हैं, तो वो सुधा भक्ति नहीं होगी। स्वरूप सीधा होने पर भी या तो तामसिक होगी, अधिकांश तामसिक होगी। जिन लोगों में अभी तामसिक गुण प्रधान है, क्रोध करते हैं, विवाद करते हैं, उनकी भक्ति कैसे होगी? वो तामसिक हो जाएगी। किसी की भक्ति राजसिक हो जाएगी। तामसिक जैसे किसका हुआ, जो लोग किसी को भगवान का भजन करते हैं, और किसी को रावण कुंभकर्ण की भक्ति, उनकी भक्ति थी, हिरण्यकश्यप की भक्ति थी, किंतु तामसिक थी। बहुत से लोग जो भजन करते हैं, हरे कृष्ण नाम करते हैं, और उनके अंदर में काम क्रोध लोभ मद मोह रहे, और ये आदमी मर जाए तो अच्छा हमारा भी, और हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो ये भक्ति कैसी होगी? स्वरूप सिद्धा है किंतु तामसिक होगी। स्वरूप सिद्धा होने से ही उत्तम भक्ति हो जाएगी, ये बात गलत है। इस चीज को समझने की चेष्टा करो। इसलिए ये राजसिक तामसिक और सात्विक, इन तीनों गुणों को छोड़ो। प्रहलाद महाराज जी का ये विचार है कि ये प्रतिष्ठित होने की चेष्टा करो। इसी सबको समझने की चेष्टा करो तो भजन होगा। आने तो भजन करके उनको ठग लूँ, पैसा कमा लाऊँ, पैसा कमाना ये राजसिक हो गया, और बैंक बैलेंस रखेंगे हम इससे सुखी हो जाएंगे, भाई मरेगा उसमें भी। और सात्विक क्या है, एकांत में, यहाँ बहुत आदमी हैं, मन नहीं लगता, हम बाहर नहीं जा सकते, एकांत में गोवर्धन में भजन करेंगे, वहाँ पर भजन करेंगे, गुरु को वैष्णव को छोड़ कर। ये क्या है, किसी पर दया है, किसी पर स्नेह है, ममता है, भगवान को छोड़ करके, भक्तों को छोड़कर और गुरु को छोड़कर, ये क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगी। तब तक भक्ति का संबंध अभी नहीं है, ये गौणी भक्ति है, औपाधिका भक्ति है ये। या तो वो संग सिद्धा हो जाएगी, संग सिद्धा तो बहुत ऊपर की बात है, आरोप सिद्धा भी नहीं होगी। इसलिए इन सब चीज़ों को समझने की चेष्टा करो, बुद्धि लगाओ, गुरु वैष्णव से प्रार्थना करो, यही को समझ करके कैसे हम। एक बात और समझो, आग जल रही है, उसको हमें बुझाना है, किंतु लकड़ी देते जाते हैं, घी देते जाते हैं, तो वो आग शांत हो जाएगी? यदि आग जल रही है और वो जल रही है, हमने उसमें से एक एक लकड़ी निकालना आरंभ किया और थोड़ी देर के बाद में अब लकड़ी रही नहीं जो था सब वो जल गई, तो क्या होगा? बुझ जाएगी आग। और लकड़ी उसमें डालते चले जाओ तो क्या होगा? आग बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या? हम भजन कर रहे हैं, अक्रोध आया था किसी से मार सकते हैं, तो ये क्या हुआ? ईंधन देना। यदि कामनाएं संसारी सोची गई है, एक पर एक सब कामना उठी गई, और फिर हमने क्या किया? ये ईंधन देते गए, तो क्या होगा? भज वो और तामसिक ये भाव है, राजसिक भाव, सात्विक भाव है, इनको समझने की चेष्टा करो। इसलिए एक आदमी भजन भी कर रहा है खूब, किंतु अनर्थों को दूर करने के लिए, जो अनर्थ दूर होने वाले हैं हमारे चेष्टा से, उसके लिए हम चेष्टा नहीं कर सकते। क्रोध होता है तो मार्फिक कर दिया, दंड भाई क्यों क्रोध किया? मठ के सेवा के लिए मैंने क्रोध किया, उनसे लड़ाई क्यों कर दी? प्रेमानंद जी से नहीं करने से वो मानते नहीं, उनसे क्यों झगड़ा कर दिया? उसको क्यों मारा? क्रोध की जरूरत थी, ये मठ की सेवा के लिए हमने किया, भगवान की सेवा के लिए, गुरु की सेवा के लिए। यह क्या है? ईंधन देना है। तो प्रहलाद महाराज की शिक्षा नहीं हुई, ऐसा कुछ में पहले तामसिक गुण को दूर करो, सात्विक गुण को, राजसिक गुण को, और फिर जब राजसिक आ जाए तब फिर उसको क्या करो? सत्वगुण के द्वारा उसको दूर करो, और सत्वगुण जब आ जाए तो निर्गुण के द्वारा, भक्ति के द्वारा उनको भी दूर करके शुद्ध भक्ति कुछ चेष्टा करो। यहाँ तक तो हम लोग कर सकते हैं, इसमें हमारा अधिकार है, निर्गुणा भक्ति आने में हमारा अधिकार नहीं, ये कृपा सिद्ध है, या भगवत भक्ति कृपा करे, या वैष्णव या संतो, इसमें हमारा हाथ नहीं, इसमें प्रयास नहीं है। जिसमें इसमें है वंदना, शौच, स्तुति, वैष्णव की सेवा, भगवान की सेवा, इसके द्वारा वो आएगी, अपनी चेष्टा से नहीं आएगी। किंतु तामसिक गुणों को छोड़ना और अर्थ जो बतलाया वो अपने प्रतिष्ठा से कुछ कुछ हो सकता है। अभी किसी ने गाली दिया और हमने उसको उठा करके उसके पढ़ दिया, तो ये क्या हुआ? हम उस अपने को चेक नहीं कर सकते थे, तो चेक नहीं किया, जो मन में आया बस, और उसी को और अच्छा शब्द साबित करने के लिए चेष्टा करना, नहीं यही भक्ति हमारी है और भी दिया अपरा। इसलिए केवल पाठ करने के लिए नहीं, क्या गया मैंने 7 दिन में ये पूरी भागवत पाठ कर दी, किसी जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत है। एक श्लोक देखो, एक लाइन देखो, एक शब्द देखो, डूब जाओ उसमें देखने के लिए गहराई से, इसका क्या था? तब फिर वो ज्ञान फिर होगा, विज्ञान अनुभूति हो जाएगी, फिर तुम लोग आगे बढ़ जाओ। और यही नहीं कर सकते, केवल पाठ कर दिया, समाज नियम सुना के लेकर पूरा भागवत हो गया, रामायण हो गया, कुछ काम नहीं कुछ होगा, किंतु गौण फल होगा, प्रेम फल नहीं होगा। आप चैतन्य चर्चा में हो, भागवत हो, कोई भी ग्रंथ हो, पूरी निष्ठा के साथ में, इस निष्ठा के साथ में है कि मैं इसमें प्रवेश करूंगा। पहले ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ग्रंथ को प्रणाम करो, ये ग्रंथ ग्रंथ नहीं है, कागज पूरा नहीं है, ये क्या है? भागवत जी स्वयं भगवान है, चैतन्य से स्वामी स्वयं बहुत सुंदर है, ऐसा समझ करके प्रणाम करके तब तक समझ में आ जाएगा, अन्यथा लाभ चेष्टा करने पर भी नहीं आएगा। हम लोग तो कुछ प्रयास से समझ भी लेते हैं, वंदना सौ स्तुति उनके प्रति समर्पित होकर, आप लोगों के लिए जरा कठिन हो, इसलिए इन चीजों को ध्यान में रख करके ग्रहण करने की चेष्टा से इन चीजों को समझिए। अभी थोड़ी देर मैं पाठ करूंगा, इसके बाद में ये चलता रहेगा, शाम तक बंद नहीं हो जाएगा। उपवास के दिन में अधिकतर लोग उपवास तो करते थे, थोड़ी देर बैठे बैठे इसके बाद में सोने लग जाएंगे, ऐसा मत करो। मैं यहाँ पर बैठो, सभी सुनो, और हरि नाम भी करो। नहीं तो उपवास करके जो स्वयं करते हैं बस उपवास का फल उसी में चला गया, वो मोहिनी के पास में चला जाएगा, इसलिए ऐसा मत करो। थोड़ा सा हम आरंभ करते हैं इसके बाद में आप विशेष करके पहला अध्याय समझ में अधिक से क्या करें, पहला जब भी समझ में आ जाएगा तो पार्टी पार्टी सब आ जाएगा, ये प्लेटफॉर्म है। समा प्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्याथे कथम दैत्यान अवधूत विषमो यथा। भगवान ये परिश कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं राजोवाच महाराज जी, सबकी बात है। जब जब जो हो रहा था राज सूर्य उस समय की बात है, राय सूर्य यज्ञ और अष्टमेध यज्ञ में क्या अंतर है भाई, मतलब और अष्टमेध यज्ञ में क्या अंतर होगा, और हर समय इसका अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, मतलब करना बड़ा भारी कठिन है। वो महाराज चक्रवर्ती होगा यदि युधिष्ठिर महाराज जैसे आदमी वो राय महाराज पिछू ये प्रहलाद महाराज जी ऐसे लोग करते हैं राय और असमित यज्ञ छोटे छोटे खंडल युधिष्ठिर वाले भी करते हैं रायचू यज्ञ के लिए। इस तरह से उसका फल उसकी नीचा है, उसमें ये नीचा होती है राजकीय यज्ञ में नहीं, उसमें कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। वैसे तो यदि और समय वही विष्णु यज्ञ वही किंतु राजकीय यज्ञ में, जैसे कि पांडव का जो राजकीय यज्ञ हुआ उसमें कृष्ण की सबसे पहले पूजा की गई और किसी को ध्यान रखा, तो वहीं पर राजकीय यज्ञ में कृष्ण को कृष्ण ने सबसे छोटा पद दिया पैर धोने का। भगवान कृष्ण स्वयं सबका पैर धोने के लिए और भगवान होते हुए भी ब्रह्म होते हुए परब्रह्म होकर के और सबका चरण धूलि करते हैं, और उसके बाद आप लोग भी ऐसे ही करने की कोशिश करें, छोटी सी छोटी सी भगवान की सेवा की सेवा ये महत्व होती है। इसलिए कभी ये ऐसा भाव नहीं आए कि ये छोटी सेवा है और ये बड़ी सेवा है, लगन के साथ ही सबको करें। उसमें शिशुपाल ने कृष्ण को 101 गालियाँ दी और उसमें भगवान ने चक्र से इसे मारा, उसकी आत्मा आकर के कृष्ण के चरणों में गिरी। लीनभोग माने ऐसा मत समझना जितने भगवान ने मारे हैं जितने असुरों को वो सब संको साई की मुक्ति मिली है, उसको साई की मुक्ति नहीं मिली, उसको क्या मिली, कैसे सारे से मिला, इसलिए अपने उसी के कारण इसलिए साई में नहीं हुआ। मालूम होता है कि इसमें मिल गए, वैसे अघासुर बकासुर को भी उन्होंने सर्व मुक्ति दी भले उनके अंग में समा गए, किसी किसी को जो वैसे भाव वाले हैं उनको साई की मुक्ति दी, किसी अधिकांश लोगों को वो सारू की मुक्ति सत की और बताती है। ये जब देखा महाराज जो भी दिन बड़े आश्चर्य तक होते इसमें कृष्ण को जन्म से लेकर के आज तक सब समय गालियाँ ही उसने दी और यहाँ पर सबके सामने गाली दी और उसके बीच में कुछ नहीं हो गया, सब अंग गलित नहीं हो गए और इसको भगवान ने मुक्ति मिल गई तो प्रवेश कर गया। ठीक है, गाली देना तब तक होता है तो भगवान के साथ में शत्रुता करके उनको गाली दिया और गाली देता ही चला गया, बकता गया और गला उन्होंने काटा काटा तो फिर उसकी आत्मा को ये कैसे उन्होंने पासी में नारे दिखे नारे दिखे तो वही ये प्रश्न सब ये कैसे हुआ। समम सुहृत ब्रह्मन भूतानाम भूतानाम समम समस्त प्राणियों में वो सम किसी के प्रति उनका विद्वेष नहीं, किसी के प्रति उनका मित्रता और अमित्रता इत्यादि कुछ नहीं है, सभी उनके प्रिय हैं और सबके लिए सुहृद हैं। सुहृद माने क्या, मंगल की काम कोई भी आँख मत लगाओ, विशेष करके दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं वो आँख दोनों न मिले और सीधे कम करते रहे भगवान सबके सुहृद हैं। सुहृद माने क्या होता है, यहाँ पर लिखते जाइए जो जो बोल रहे हैं यहाँ पर लिखते जाइए सब लिख दीजिए और क्या थोड़ा सा ऐसा ऐसा किया सूर्य मैंने क्या कल्याण करने वाले हैं, प्राणी मात्र का वो कल्याण करने वाले हैं। कंस का विरोधी कर रहा है, किसी बात विरोधी कर रहा है तो अभी उनका भी कल्याण चाहने वाले हैं, ऐसे सूर्य हैं। भगवान से वो लोग सूर्य नहीं है किंतु भगवान स्वयं भगवान स्वयं किसी के भी शक्ति नहीं है, सबके बराबर है। इंद्रियाचार इंद्रचार इंद्र के लिए अर्थ कथम वैज्ञान अभ्यर्थ इंद्र के लिए यहाँ पर इंद्र का मही कृष्ण देवताओं के लिए पृथ्वी की रक्षा करने के लिए हर हरण करने के लिए करके इंद्र के लिए उन्होंने क्यों दैत्यों का वध किया। यह वध करना कैसा है, विषमो जथा देवताओं के लिए भगवान की कृपा के लिए समकृष्टिता में ये विषम है, देवताओं का पक्ष लेकर के रावण का वध किया, हिरण्यकश्यपु का वध किया, प्रहलाद महाराज जी का पक्ष लिया और हिरण्यकश्यपु यहाँ पर भी प्रहलाद महाराज माने देवता और देवता वर्ग उनके लिए। कभी कभी हम लोग गुरु जी ने भी ऐसा देखते हैं सबके प्रति कम होने पर वो कोई देवता कि हमारे प्रति कोई आदर है कोई स्नेह नहीं उनके प्रति स्नेह है ऐसा मत समझो। गुरु में यह सब विषमता नहीं होती, भगवान में भी विषमता नहीं होती। ये क्यों वो दिखता है ऐसा, वो गुणों के कारण ऐसा दिखता है। जो सांसिक गुण वाले हैं वो अधिक देखेंगे, उनके लिए घोर अंधकार और राजसिक वालों के लिए चंद्र ज्योत उतना और सूर्य के समान सात्विक वाले प्रकाश वाले और विशुद्ध वालों के लिए क्या चंद्र सूक्ष्म ऐसे चीज कुछ नहीं है। वो लोग विषम नहीं देखेंगे, नारद जी कभी भी विषम नहीं देख सकते, ब्रह्मा जी वो भी नहीं देखेंगे, शंकर जी नहीं देखेंगे, प्रहलाद महाराज जी नहीं देखेंगे जो भक्ति में प्रतिष्ठित हो गए और सत्व वाले जितने सबसे नीचे निकल के घोर कर्म करते हैं वो लोग अधिक सक्रिय देखने के लिए बाध्य हैं। उसी के उत्तर में अधिकार है और एक न ही अश्चार्थम सुरगले आत्मनो नहीं वा सुरेभ्यो सिद्ध न उद्वेग गुण से ही भगवान विष्णु ये प्रश्न भी कर रहे हैं, सत्साथ परमानंद आत्मस्वरूप है, इसलिए देवताओं के प्रति पक्षपात करने से उनका क्या लाभ होगा? जो संपूर्ण रूप से आपका काम है, जिनकी कोई कामना नहीं है, आज जो सब समय आत्मा राम है, आत्मा में रमण करने वाला, उसको कोई चीज की अभिलाषा आकांक्षा नहीं है, न सुख की न सुख, और उनके समान कोई शक्तिशाली नहीं है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, उनको क्या जरूरत है कि देवताओं से क्या मिलेगा, ये उनका पक्ष नहीं है, और असुरों से उनको कोई भय होने की जरूरत है, मरने वाले भय नहीं, उनको कोई कष्ट देगा नहीं, उनसे भी कोई नहीं, अब स्वास्थ्य की संभावना नहीं, इसलिए उनके साथ में क्यों होगा जरूर, इसलिए ऐसा संभव नहीं। वह स्वयं निर्गुण है, प्रहलाद महाराज भी ऐसे निर्गुण थे, इसलिए उनके प्रति जितना भी किसी ने द्वेष किया उन्होंने द्वेष माना ही नहीं, और उनको कोई भी संपर्क ही नहीं हुआ किसी के प्रति, उनका कोई भी द्वेष आचरण या उनके प्रति कोई विचार करना सोचना भी हमारा दे दिया ऐसा नहीं था, इसलिए असुरों के निकट उनको भय की भी कोई बात नहीं और देवताओं से कुछ लाभ की बात नहीं, इसलिए असुरों के लिए किस तरह से वो बध करेंगे, क्यों बध करेंगे, उनका क्या लाभ था? इति न सुमहाभागव नारायण गुणान प्रति संशम सुमहान जात सद्भावान से तुम अर्हति। युधिष्ठिर महाराज जी को संदेह था कि नहीं, इसलिए नहीं था, जैसे परीक्षित महाराज जी को कोई भी माया का कार्य में नहीं था, पहले ही उनका कोई संदेह नहीं, इसलिए मालूम होता है कि हे हमको ये महान संशय उत्पन्न हुआ है, हे तुम महाभाग किसको कर रहे हैं, तुम महाभाग कैसे जान लेंगे कि महाभाग है, कैसे जान लेंगे, और जो जान जाएगा कि वो तुम महाभाग हैं और हमारे संदेह को सब दूर कर सकते हैं, उनके लिए ऐसी प्रार्थना है, ये लोग देखा लाने के लिए ऐसी सब प्रार्थना है, तो ऋषि महाराज जी साधारण आदमी नहीं है, मुख्य पुरुष हैं, उनको ये समझ उस सभा में बैठे हुए जो इस पाल बंद बकरी इत्यादि के जो दल वाले हैं, साधारण लोग हैं, कनिष्ठ अधिकारी हैं, उनके लिए भी ऐसा पूछ रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं, उनके लिए कहते हैं हमको संदेह हो, नारद जी मुस्कुराने लगे, उनको तो संदेह होने की कोई संभावना नहीं, जैसे कल वो बतला रहे थे ना, जब कभी कभी कनिष्ठ भी उत्तम को आशीर्वाद देता है, तो ऐसे ही महाराज युधिष्ठिर जी, युधिष्ठिर जी को आगे हम लोग संवाद में आएंगे कि यह विषय हो गया है, युधिष्ठिर जी आप बड़े नारद जी को युधिष्ठिर महाराज जी कह रहे हैं, उनके चरण धोने जा रहे हैं और स्तुति तव कर रहे हैं और कहेंगे आपका जैसा ये जगत में आदमी कोई भक्त नहीं है, ऐसे समझना, और नारद जी क्या कर रहे हैं, तुम हमको कह रहा है, हम तो देखते हैं कि हम लोग जैसे कोटि लोगों से तुम कैसे है, आज भगवान जी के घर में आए हैं, जिनके दर्शन के लिए, जिनका मनोरंजन करने के लिए, जिनका विनोदन करने के लिए, उसके लिए आए हैं, वो लोग कम है, आज हम सभी लोग उसी में आके आ रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, तुम्हारे घर में हमारी कुटिया में नहीं आएंगे, ध्यान में नहीं आते हमारी कुटिया में क्या, और वो तुम्हारे घर में अपनी समस्त रानियों के साथ में यहाँ पर पड़े हुए हैं, और किसी के उनकी सेवा ग्रहण करने के लिए नहीं, उनका विरोधन करने के लिए, इसलिए महाराज जी उनकी साधारण आदमी नहीं है, इनके अतिरिक्त ऐसे प्रश्न कोई कर ही नहीं सकता है जो कि सबसे ज्यादा परिपूर्ण रूप से न हो, वो हम लोगों के लिए नहीं सकता है, अब हम लोग उसको सुनकर के अपने इतना हे तुम्हा भाग
महाभाग कौन है?
यशोदाच महाभागा महाभागा कपोचा।
एक महाभाग है नंद महाराज और दूसरे महाभाग है
यशोदा,
और उनको ये महाभाग कह रहे हैं। सबसे समझे छोटी में है महाराज
महाराज।
इसलिए कहते हैं भगवान नारायण के अनुग्रह और निग्रह गुणों के प्रति हमारा हम लोगों का सभी का अत्यंत संशय है। किसी को निग्रह कर रहे हैं, किसी को दंड दे रहे हैं, किसी को पुरस्कार दे रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, हम लोगों को महान संशय हो रहा है। भगवान सतीश में समी नहीं आएंगे, आप प्रमाण इत्यादि के द्वारा प्रमाण इत्यादि के द्वारा सम्यक रूप से संशय का चेतन करें। उसी बात साधु महाराज हरेश्वरित अद्भुतम जब भागवत महात्म्यम भगवत भक्ति विवर्धन ये के परम पुण्य ऋषि नारदादि नत्वा कृष्णायम नये कथितो हरे कथम। ये कथा जो यहाँ पर जो हो रही है राजोपाल परीक्षित महाराज जी कर रहे हैं और उसका उत्तर दे रहे हैं, अब यही लोग वार्तालाप में अब वहाँ की बात लाते हैं। युधिष्ठिर महाराज जी कह रहे हैं नाथ और भी यदि पढ़ाओ तो चला जाएगा जन्मेजय और वैशंपायन में चला जाएगा वहाँ सुख गोस्वामी और सौनक आदि की पूजा। इस तरह से एक ही प्रस्थान चंद्र तक में एक ही जो परंपरा की धारा से ये सब सुना रहे हैं। नारद जी के मूल हैं और परिस्थिति महाराज अब ऋषि ये प्रश्न कर रहे हैं और ये इसका उत्तर देने के लिए महाराज परिस्थित महाराज को उत्तर देने के लिए सुखदेव गोस्वामी नारदादि नारद जी का जो ऋषि महाराज का उपस्थान में जो प्रथम प्रथम इत्यादि हुआ था उसको यहाँ पर क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रमाण की तरह इसमें देना। महाप्रभु जी ने कहा कि सर्वत्र प्रमाण विधि प्राण वचन प्राण वचनों का प्रमाण देकर के कोई चीज जाना चाहिए ये साधारण लोगों के लिए भी संभव होता है। क्योंकि जो भगवत भक्ति या आचरण करते हैं उनके लिए ये ठीक है, दूसरे लोगों को ये समझाना बड़ा भारी कठिन है, नहीं समझेंगे। साधु कृष्ण महाराज हरेश्वरित अद्भुतम भागवत महात्म्यम भगवत भक्ति वो आपका यह प्रश्न बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ है। उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। यह कैसा है जो सुनेगा उसका भी आनंद वर्धन करने वाला ये और संसार की दुख को दूर करने वाला है। संसार का दुख जो है यह माया और काल के द्वारा प्रकृति के द्वारा ये शक्ति दूर हो जाएगा यदि कोई अच्छी तरह से सुन करके समझे और भगवान के प्रति भक्ति को बढ़ाने वाला है और भक्ति के द्वारा ही ये सब काम होगा। संसार भी दूर हो जाएगा और इन तत्वों को भी समझ सकते हैं। अद्भुत है ऐसा ये भगवान की कथा। आपके कथा प्रश्नों को सुन करके हमारे हृदय में बहुत उल्लास हुआ और एक ही साथ में भगवान के विचार के उत्तर हमारे हृदय में आया जो आपके साथ में पालन करेंगे। आपको सावधानी के साथ में सुनिए जिससे कि आपकी भक्ति होगी जिससे संसार भी दूर हो जाएगा और ये जो प्रश्न आपने किया ये संसार इसको पहले नारद आदि ऋषियों ने बतलाया है। मैं महर्षि वेद व्यास को प्रणाम करके हरि का अद्भुत चरित्र कौन सा रहे जिसे जहाँ जहाँ पर कोई हरि कथा हो गुरु जी को प्रणाम करके वैष्णव को प्रणाम करके तब कथा आरंभ करते चाहिए। निर्गुणस्य निर्गुणो ही अति य अजो अव्यक्तो भगवान प्रकटे परे तो माया गुणम आरूप्य बाद के बाद था पता नहीं गत यही से आरंभ होता है। भगवान ने भक्त लोग भी निर्गुण हैं और भक्ति भी निर्गुण है, तीनों चीजें सत्र स्तंभ में उसका कोई भी मिश्रण नहीं है, किंतु हम लोग इन गुणों में रहने के कारण हम भक्ति को भगवान को और भक्त को गुण लेते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके किस चीज को विवेचन करने की चेष्टा करें, भगवान देखिए प्रकृति के अति प्रकृति माने जैसे काम हम उसके अधीन हैं, अभी नहीं सोना चाहिए नित्य आ रहे हैं ये काल है। क्यों तो भाई किस लिए आ रहे हैं, यही सब काल का रात नाथ भी सो जाते हैं दिन में जगते हैं और जिस विषय में रुचि नहीं होती है उसमें हम भगवान के भक्ति में जिनको रुचि नहीं है वो तो सो जाएंगे। इसलिए ये गुण के अंतर्गत है, इसलिए समझो ये हमारे ऊपर में काल का कुछ है। अभी हम लोग शांति सुनना क्या है जान रहे हैं सुन रहे हैं और तब भी समझे ऊपर नहीं उठ सकते, वो रात मन का पत्थर ऊपर चढ़ जाएगा सुन लेते हैं और जिनका संस्कार है बड़े आनंद के साथ में इसका श्रवण भक्ति बढ़ेगी। जन्म से रही भगवान भक्ति और भक्त तीनों राग द्वेष इत्यादि से भी अतीत हैं वो, और देह प्राकृतिक देह और इंद्रियों से रही। उत्तम भक्त तो रहेंगे यहां तक कि मध्यम अधिकारी जो हैं कनिष्ठ भी उनको देह मन है होने पर भी विषय छाड़िया कभी शुद्ध वैमान विषयों से शुद्ध रहते हैं, किंतु कनिष्ठ अधिकारी के लिए और मध्यम अधिकारी के लिए अभी अभी जो है मध्यम कनिष्ठ मध्यम मध्यम वो कुछ बात कर वो सात्विक इत्यादि में रह सकते हैं। हम लोग अपने अवस्था भेद से तामसिक और रजोगुण में होने से भक्ति जो करेंगे वो वैसा ही होगी और वैष्णव के संग से हरिनाम करते 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 धीरे 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 राज तामसिक राजसी और सात्विक की गति हो जाएगी, तब भगवान को इस रूप में समझेंगे जिस प्रकार से नारदी हो चुका। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि अर्जुन प्रहलाद महाराज जी नारद जी हनुमान इत्यादि जी का प्राकृत शरीर है, हम लोग ये भी धारणा नहीं कर सकते ये गुरु जी का शरीर जितना भी हम अभी करें जब तक ऐसा उत्तम अधिकार नहीं आएगा हम बाध्य हैं। और इसलिए कभी कभी हृदय हम लोगों का बगाव कर देता है, इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसे भाव न हो। यहाँ तक कि मध्यम अधिकारी के प्रति भी वैसा नहीं होता, उत्तम अधिकारी की भी तो है तो कभी कभी हम लोग भूल में कह देते हैं ब्रह्मा जी जब आएंगे तब मैं अपनी बात ऐसे शब्द में नहीं करता, ब्रह्मा जी दूसरे दूध में परंपरा है इसलिए ऐसा कि जो गुरु जी भी आ जाएंगे ब्रह्मा जी आ जाएंगे स्वयं पदे तो अभी मैं अपनी बात को नहीं छोड़ूंगा ऐसा मत करो भूल करके ऐसा मत कोई प्रतिज्ञा करो जब ब्रह्मा जी आएंगे तभी अपनी बात पर मैं खड़ा रहूंगा। अरे अब बात को तो छोड़ दो, ब्रह्मा काल आकर के तुमको चूर्ण विचूर्ण कर देगा, तुम उनकी बात मानने के लिए बात है। अभी क्रोध आएगा भगवान की जरूरत ब्रह्मा की जरूरत क्रोध भी आकर के क्या करा लेगा, जो चाहेगा वह करा देगा, नाक में नाक देकर के सब करा लेगा। इसलिए ऐसा शक्ति की जरूरत और क्या नहीं है। Yeah. अब वो आगे बढ़ रहे हैं। रजस्तम सत्व रजस्तम इसी प्रकृतेर न आत्मनो गुणा सत्व रज ये तीनों गुण हैं किसके हैं प्रकृति के हैं न आत्मना आत्मा का ये गुण नहीं है इसको अलग करने की चेष्टा करो किंतु अलग होना बड़ा भारी कठिन है भाई हम लोग नहीं कर सकते जितना हरि नाम करेंगे भगवान की कृपा बरसेगी उनकी हम सेवा करेंगे तो इसको थोड़ा थोड़ा समझ करके ठीक करने की चेष्टा करें इसलिए सत्तम रज ये जो हैं अभी नहीं समझ रहे हैं जैसे अभी गीता में जरा अच्छी तरह से देखना पढ़ना बल्दे विद्याभूषण और विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर के पिताओं को देखना हम लोग समझ नहीं पाते हैं जैसे हमारा खाद्य कैसा है हमारा स्वभाव कैसा है हमारे व्यवहार कैसे हैं हम किन चीज़ों को चाहते हैं और नहीं चाहते हैं इन सब में ये तीनों को प्रकृति के ही